Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Manisha Panchakam, presented by Swami Sri Avadesh Chaitanya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhagavad Bhaktajan, आज केवल प्रथम श्लोक का ही उच्चारण करेंगे। जाग्रत् स्वप्न सुसुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुजृम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्पिति दृढ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चाण्डालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरेषामणिषामम चाण्डालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरेषामणिषामम। भगवद् भक्तजन, श्लोक का अर्थ बड़ा ही सरल है। वो जो एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता, संपूर्ण दृष्टि उस चैतन्य में, उस संविद में, उस ज्ञान में दे रहे हैं। जब तक साधक उस चैतन्य से परिचय नहीं कर लेते हैं, तब तक उनके व्यवहार में शुद्धि संभव नहीं है। इसीलिए आचार्य शंकर, जो पूर्व संस्कार से ग्रसित थे, ब्राह्मणत्व के अभिमान भी रहा और उस अभिमान को, उस अहम को दूर करने के लिए बाबा विश्वनाथ एक निकृष्ट वेश धारण करके आविर्भूत हुए। इस संसार में सबसे अछूत और उससे निकृष्ट जाति कुछ नहीं हो सकता है, वो है चांडाल, जो डेड बॉडी, मृत देह को जलाते हैं, स्मशान में रहते हैं, कुलाचार धर्माचार को, धर्म शास्त्र को अगर देखे तो उस चांडाल के अगर छाया भी स्पर्श हो जाए तो स्नान करने की विधि है। भगवत भक्तजन, व्यवहार में हम है तो व्यवहारिक दृष्टि से शायद कुछ भेद को स्वीकार कर सकते हैं, परंतु जब हम साधना करते हैं, चित्त को शुद्ध बनाना चाहते हैं, उस परम तत्व को अनुभव करना चाहते हैं, तब कहीं हमें इस ऊपर दृष्टि से, ऊपरी दृष्टि से अंदर की ओर जाना पड़ता है, जहां जाकर के बाह्य वेश, बाह्य आचार, बाह्य आकार, बाह्य प्रकार की कोई मूल्य होता नहीं। इसीलिए भगवान आदिदेव महादेव एक ऐसा रूप धारण करके प्रकट हुए हैं, संपूर्ण मानवता को वो यह शिक्षा देने के लिए कि घोर से घोर तर जोनी में क्यों ना वो आए, वहां भी मैं ही हूं चैतन्य रूप से प्रदीप्त, मैं ही हूं। भगवत भक्तजन उस चैतन्य को पहचान लेने से सर्वात्म भाव में आप प्रतिष्ठित हो सकते हैं। संपूर्ण भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा में जो साधनाएं हैं उसमें नैतिक जीवन, व्यवहारिक जीवन कुछ भी आप निश्चय करके रखे, सभी धर्म ग्रंथों आचार्यों के मन में यही एकमात्र अभिलाषा है कि अपनी वेष्टिता परिच्छिन्नता को त्याग करके सर्वात्मता को प्राप्त करें। इसलिए ऊपर की दृष्टि से आप सर्वधर्म समन्वय का कितना भी बड़ा आयोजन कर लीजिए नारायण, वो सर्वधर्म समन्वय होता नहीं है। जब तक इस अद्वैत चेतना तक आपकी दृष्टि न पहुंचे तब तक भले ही हम एक मंच में अनेक लोग बैठ सकते हैं भिन्न धर्मावलंबी, परंतु कहीं ना कहीं वो चैतन्यता से जो अलग है ऐसा कह करके हम एकात्मता को प्राप्त नहीं कर सकते। संपूर्ण व्यवहार हम उस चैतन्य से करते हैं परंतु कहीं ना कहीं उस चैतन्य से बेखबर भी रहते हैं। कभी भी हम किसी मुर्दे मृत व्यक्तियों से बात कर सकते हैं, करते हैं, क्यों? जो रेस्पॉन्स दे सकते हैं, जो हमारे भावों को समझ सकते हैं, वो प्रदान उत्तर दे सकते हैं, उनसे ही हम व्यवहार करते हैं। तो आप अल्टीमेट किससे व्यवहार कर रहे हैं? किसी जड़ से, कोई बॉडी से, अथवा कोई और सत्ता है जो इस बॉडी के अंदर से अपने को अभिव्यक्त करता है और आपके भावों को, आपके आदर को, आपके श्रद्धा को ग्रहण करके वो अपनी तरफ से रेस्पॉन्स भी देते हैं, वो है कौन? इसीलिए छोटा सा बालक जन्म हुआ और पिता जाकर के उसको बड़ा प्यार से, लाड़ से उसको बुलाते हैं, तालियां बजाते उनके सामने, उनके बोध नहीं है, वाणी नहीं है, परंतु वो देख करके कुछ देर देखा फिर मुस्कुरा दिए। नारायण कभी भी हमने जानने के प्रयत्न किया कौन मुस्कुराया? उस बालक के कंठ स्वर नहीं है, अभी वाणी प्रकट नहीं है, उस बालक के रूपक ग्रहण सामर्थ्य उतना नहीं है, उस बालक के शब्द सामर्थ्य भी उतना प्रकट नहीं हुआ है, उस बालक के चेतना में भी उतनी प्रकटता नहीं है, फिर भी कौन है जो आपके आदर को, आपके स्नेह को, प्यार को समझा और अंदर से रिस्पॉन्स किया कि मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूं? कौन है वो? जो चैतन्य है, वो जो सत्ता है, जिसको आप चैतन्य कहिए, ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, कोई भी नाम लीजिए, आचार्य शंकर आदि महादेव के समक्ष उस चैतन्य को जिन्होंने जाना और ऐसे ही कह रहे जो कि हमेशा स्फुट तरा जागृत अवस्था में, स्वप्न और सुषुप्ति में भी जो नित्य निरंतर प्रकाशमान है, केवल एक जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ही नहीं, या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुसु, ब्रह्मा से लेकर के एक चीटी पिपीलिका चीटी तक जो एक सत्ता विराजमान है, वो दृष्टि हमें लानी है। इसलिए भगवत भक्तजन, जब तक हम उस चैतन्य उस सत्ता से परिचित नहीं होंगे, तब तक हमारी साधना हमारी आराधना पूरी नहीं हो सकती है। परिच्छिन्न रूप से जब तक आप साधना करते हैं, वो साधना के अधम आधम भाव है, उत्तम ब्रह्म सद्भाव उपनिषद कहते हैं। जिस चेतना में आप उस चैतन्य को अनुभव कर सकते हैं और उस चैतन्य में आपके सारी व्यवहार है, उस दिन आपके साधना आराधना पूर्ण की ओर जा सकती है। इसलिए सारा व्यवहार जो है ना, इस आकार प्रकार को लेकर के, और जब तक इस आकार और प्रकार को लेकर के आप व्यवहार करते हैं, तब तक निश्चित रूप से विकार है। आप विकार से रोक नहीं सकते हैं अपने को। और हमारी धर्म ग्रंथ आचार्य यह उपदेश देते हैं, इस विकार को अगर दूर करना है तो इस विकार के अंदर जो अविकार, इस रूप के अंदर जो अरूप, उस सत्ता से परिचय प्राप्त करो। इसलिए भगवत भक्तजन आचार्य शंकर ध्यान से देखा कि सामने जो उपस्थित है वो और कोई नहीं है, आदिदेव महादेव है, और उन्होंने अपना स्तुति उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये जो चैतन्य सत्ता है, जो चित सत्ता है, जो सबके अंदर अनुस्यूत है, सैवा अहम, किस प्रकार से साधक स्व तक ले आते, सैवा अहम, वो चैतन्य ही मैं हूं। सैवाहम न च दृश्य वस्तु इति, जो अपने से भिन्न नाम रूप रूप से पृथक रूप से प्रतीति गोचर है, वो मैं नहीं हूं। वो जो चैतन्य है वो मैं हूं। दृढ़ प्रज्ञापियस्यास्ति चेत, ऐसा प्रज्ञा जिनके अंदर दृढ़ हो गया। महाराज जब सुनते हैं अध्ययन करते हैं तब तो लगता है कि वह चैतन्य है, वो मैं हूँ, वो सर्वत्र ओत प्रोत है, जगत साक्षी के रूप में वही चैतन्य विद्यमान है। परंतु वो जो स्थिति है चैतन्य की प्राप्ति की, वो दृढ़तर नहीं होने हो सकता है अथवा होता नहीं है। आचार्य शंकर प्रार्थना में कह रहे हैं कि वो जो प्रज्ञा है चैतन्य है, जिनके प्रज्ञा दृढ़ हो गया है, अर्थात जिनके सारा व्यवहार जो है चैतन्य में ही, चैतन्य के साथ ही होता है, जस्यास्ति सेत, अब अंतिम चरण में अपने व्यक्तित्व को समर्पण के एक भाव है, चांडालस्तु सतु दिजोस्तु गुरु रित्येषा मणीषाम, चाहे वो घोरतर ज्योनि क्यों ना प्राप्त करता हो, चाहे वो चांडाल हो, वो मेरे गुरु है। भगवत भक्तजन, अध्यात्म शास्त्र में अथवा अध्यात्म जीवन में गुरु के एक अपूर्वता है। इस व्यक्तित्व में ऐसा कोई है जो पूर्ण रूप से समर्पण करने नहीं देते हैं। परंतु जब भी हम आचार्य के जीवनी को देखते हैं, उनके ग्रंथ रचनाओं को देखते हैं, स्तुतियों को पढ़ते हैं, स्तुति करते हैं उनके शब्द के द्वारा, हमेशा वो गुरु के प्रति एक अपूर्वता, एक अलग दृष्टि। इससे पूर्व भी हमने विचार किया एक बार दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमइदम् श्री दक्षिणामूर्तये। वहां पर भी आचार्य गुरु के प्रति एक समर्पण। इसलिए भगवत भक्तजन, गुरु कौन है और जीवन में गुरु की आवश्यकता है अथवा नहीं, इस पर अनेक चर्चाएं हम लोगों ने सुन रखा। परंतु जब कोई प्रतिष्ठित आचार्य, कोई अवतारी पुरुष जब उस गुरु तत्व के ऊपर कुछ कहते हैं, तो इतना तो निश्चय है कि गुरु जीवन में आवश्यक है एवं व्यक्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, उस चैतन्य सत्ता को पहचान करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। आप एक ऐसे अदृश्य अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश करना चाहते हैं जहां आपके लिए कोई नहीं है, अज्ञात वह जगत है। तो उस अज्ञात जगत में जाने के लिए कोई तो चाहिए जो आपको गाइड कर सके। तो अतीन्द्रिय जगत में जो गाइड करते हैं, मार्ग दिखलाते हैं, वही है गुरु। इसलिए अध्यात्म जीवन में गुरु की भूमिका अनन्य है। और कई लोगों के मन में ऐसा भी प्रश्न होता है कि जीवन में गुरु आवश्यक, किसी व्यक्ति को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए क्या? आपके इस प्रश्न के ऊपर अनेक तर्क, अनेक लॉजिक हो सकते हैं, परंतु नारायण इतना भी समझिए, अगर गुरु हम कर नहीं पा रहे हैं, इसका एक कारण वो भी है कि अपना ईगो, अहम। किसी व्यक्ति के पास हम कैसे अपने को समर्पण कर दे, वो भी तो हम जैसा ही है। हमें पता भी नहीं लगता है कि हमारा अहम किस प्रकार के बाधक के रूप में काम कर बैठता है। इसीलिए किसी के अधीन होकर के रहना और अपने अध्यात्म विकास करना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए यहां देखिए आचार्य स्वयं कह रहे कि देखिए वो मेरे गुरु है, अगर जिनके हृदय में वो प्रज्ञान, वो ज्ञान प्रतिष्ठित है, जो कि चैतन्य सर्वत्र अनुस्यूत परमात्मा है, जिनके हृदय में वो चैतन्य दृढ़ है, चाहे वो क्यों ना निकृष्ट जोनी, चांडाल जोनी में ही क्यों ना हो, वो मेरे गुरु है। भगवत भक्तजन, आचार्य शंकर के ही एक गुरु स्तुति है गुरुवाष्टकम, उसमें वो लिखते हैं, तुम्हारा शरीर सुंदर मिला, तुम्हारे धर्म पत्नी भी सुंदर है, तुम सदा रोग मुक्त हो, तुम्हारी यश जो है चारों तरफ फैला हुआ है, और तुम्हारा धन भी मेरु तुल्य है, अकूत धन है। परंतु अगर गुरु चरणों में तुम्हारा समर्पण नहीं है, ततः किम, ततः किम, ततः किम, ततः किम, उससे क्या फल मिलने वाला है? शरीरं सुरूपं सदा रोगमुक्तं यशश्चारुचित्त पुत्रं धनं मेरुतुल्यं गुरुरग्निप्रज्ञे मनश्चेन्न लग्ना ततः किं। नौ श्लोक है और प्रत्येक श्लोक के अंतिम चरण में जीवन के जो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उत्कर्ष, उन्नति, प्रतिष्ठा, मान सब है। और आचार्य अंतिम दो चरण में ये निवेदन करते हैं, गुरु रंगरी पद में मनस चेन लग्न तथा किम तथा किम तथा किम।